आज हम तीसरे अध्याय में जाएंगे और तीसरे अध्याय में पहले पद से लेकर के 20 पद तक आशा है कि आपने उसको पढ़ा होगा क्योंकि आपके पास संदेश पहुंचाया जाता है और प्रेरित सेवा आरंभ हो चुके हैं। अब आरंभ के साथ विस्तार है उस सुसमाचार की सेवा का जो कलीसिया के पास है उसका विस्तार है। अब इस विस्तार में किस प्रकार से आगे एक ही कदम सेवक लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रेरितों का आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर उस कलीसिया के विस्तार के में क्या कार्य कर रहा है, किस प्रकार से लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहा है, किस प्रकार से लोगों के जीवन में आशीष दे रहा है। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उनकी सेवा में चाहे उनकी सेवा में तीन बातें हम बार बार देखते हैं, उसने प्रचार किया, उसने शिक्षा दी, उसने चंगाई दी, बार बार इन तीन बातों को। और ये तीन चीज़ों को हम हमेशा देखते हैं बाइबल में, तीनों चीज़ों को निरंतर हम देखते हैं। कई लोग चंगाई के बाद में दूसरी तरह से विचार करते हैं, उसको हमें समझना है, लेकिन सबसे मुख्य चंगाई आत्मा की चंगाई जो आज हम देखना चाहेंगे। जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं तो तीसरे अध्याय को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले पद से लेकर 10 पद तक पहला भाग है जहाँ परमेश्वर की सार्वभौमिक सामर्थ और अधिकार को हम देखते हैं और ये सामर्थ और अधिकार एक व्यक्ति के जीवन में चंगाई के कार्य के द्वारा प्रदर्शित होती है। परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की सार्वभौमिकता पहले पद से लेकर के 10 पद तक हम देखते हैं। तीसरे अध्याय के 11 पद से लेकर के 26 पद तक हम परमेश्वर का जीवनदायक सुसमाचार और पाप से छुटकारा, और तब हम देखते हैं किस प्रकार से पत्रस यौना के साथ मिलकर फिर प्रचार करता है, जिसको आज हम देखना चाहेंगे। सो आइए हम पहले खंड में जाएंगे जो पहले पद से लेकर के 10 पद तक है, किस रीति से हम इस बात को देखते हैं। ये सच है पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके अब ये प्रेरित जो है यीशु मसीह के गवाह बन चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था प्रेरित काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। अब परमेश्वर की सामर्थ इनके जीवन में प्रबलता के साथ परमेश्वर ने दी है और सामर्थ में होकर के अब ये यरूशलम में ये गवाही देने का कार्य कर रहे हैं और उसके प्रस्थान के साथ साथ वो गवाह बन चुके हैं। अब उस गवाही में जब पिछली बार हमने देखा था वो पत्रस द्वारा पहला प्रचार था जो दूसरे अध्याय के 14 पद से हमने देख चुके हैं। वहाँ पर ऊंचे शब्द से पत्रस खड़ा होकर देश देने लगा और ये यरूशलम के लोग हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हम एक खास बात को देखते हैं, ये प्रचार क्या कर रहा है, ये सुसमाचार क्या कर रहा है। सुसमाचार के अंदर वो सामर्थ्य है कि ना केवल वो जीवन को बदले लेकिन हर एक दीवार को तोड़ करके सब लोगों को समान बना दे। जो दीवार उस समय में यहूदी और अन्य जातियों के मध्य में थी, जो दीवार उस समय यहूदी और सामरियों के मध्य में थी, वो दीवार उस समय छोटे और बड़ों के मध्य में थी, या उन जो धर्म के ठेकेदार थे उनके और सामान्य लोगों के मध्य में थी, ये सुसमाचार की सामर्थ्य और सुसमाचार का प्रचार उस सब दीवार को ढा रहा है। आज भी ये सुसमाचार लोगों के जीवन में यही कार्य करता है। वो सारी दीवारें जो ऊंच नीच की दीवार होती है, जो जातिवाद की दीवारें होती हैं, जो छोटे बड़े की दीवार होती है, जो बड़े और अनपढ़ की दीवार होती है, देशी विदेशी की दीवार होती है, बहुत सारी की दीवारें हैं जो आज मनुष्य को विभाजित करती हैं, वो परमेश्वर का वचन ढाता है और ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और उसी को हम पूरे प्रेरित काम के इन 28 अध्याय में क्रम से आगे देखते चले जाते हैं। जब हम इस बात को आते हैं तो हम एक बात को और देखते हैं प्रेरित काम उसके दूसरे अध्याय में, पवित्र आत्मा की साक्षी को, कि पवित्र आत्मा उंडेला गया और किस प्रकार से उसने साक्षी दी 13 पद से लेकर 21 पद तक। दूसरा सुसमाचार की साक्षी को, पवित्र आत्मा की साक्षी है, दूसरा सुसमाचार की साक्षी है जो दूसरे अध्याय के 22 से 41 पद तक। तीसरा कलीसिया की साक्षी, ये जरूर बार बार हम पीछे मैं जा रहा हूँ ताकि हम समझने पाए। अब कलीसिया स्थापित हो चुकी है, अब कलीसिया के पास एक जिम्मेदारी आ गई है कि कलीसिया एक साक्षी के लिए जीवन को व्यतीत करे और वही चीज को हम आगे बढ़ते हुए देखते चले आ रहे हैं। एक और खास बात को, जब पत्रस और यौना ने प्रभु को पा लिया, उसकी सच्चाई को जान लिया, तो ये अपने नियमित रीति से इन्होंने मंदिर में जाना नहीं छोड़ा, उसका एक उद्देश्य था। जब तक उन लोगों ने मंदिर के अधिकारियों ने या मंदिर के जो धर्म के ठेकेदार थे उन लोगों ने उनको मंदिर से बाहर नहीं निकाला, तब तक हम देखते चले आएंगे वो मंदिर में खड़े होकर प्रचार करते रहे। क्यों? ताकि उन उस स्थान से वो परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को और मसीह को प्रदर्शित कर सके, क्योंकि उनकी दृष्टि में मसीह अभी आने वाला था। आज भी यहूदियों की दृष्टि में मसीह नहीं आया है, मसीह आने वाला है। लेकिन इन शिष्यों की दृष्टि में, इन शिष्यों के अनुभव में, इन शिष्यों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। उन्होंने उस यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त किया है। अब ये उस को ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है, तुमको उस यीशु को जानना है, तुमको उस यीशु को पहचानना है, तुमको उस यीशु को स्वीकार करना है। और इसलिए इन्होंने मंदिर में जब तक इनको अवसर मिला ये प्रचार करते रहे। मेरे प्रियो, हमें किसी भी स्थान पे कभी भी मौका मिले, हमें परमेश्वर की साक्षी बिना समझौते के, बिना समझौते के उसकी साक्षी देना है। तब आगे चल करके अब आप आइए आइए जब तीसरे अध्याय को आरंभ करते तो पहले दो पद में पतरस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यहाँ पर लिखा है संध्या के 3 बजे। अगर नीचे इस बाइबल में देखेंगे फुटनोट में तो वहां लिखा हुआ 9 घंटे, ये 9वां घंटा था और भोर 3 बजे से दिन आरंभ होता था। ये यहूदियों की प्रथा थी, यहूदियों का तरीका था कि वो मंदिर में 3 बार प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे, सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे। इसीलिए अगर आप भजन संहिता 55 में जाएंगे और उसके 17 पद को पढ़ेंगे तो दाऊद वहां पर कहता है कि मैं 3 बार शाम को, भोर को, दोपहर परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा। इसीलिए दानियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो हम दानियल के जीवन में उसके 6 अध्याय में उसके 10 में पढ़ते हैं कि दानियल भी दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख जाया करता था। तो ये यहूदी की रीति थी, वेदी थी कि वे दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करते थे। लेकिन इन 3 क्रम में इस मंदिर में एक विशेष बात ये भी होती थी कि तीनों समय में अलग अलग तरह के लोग जाया करते थे और शाम के समय में जो आराधना होती थी वो ऐसे लोग जाया करते थे जो अधिकतर नीडी होते थे, किसी प्रकार की आवश्यकता में होते थे। अगर आप और अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मालूम चलेंगे। और यही कारण था कि जब 3 बजे लोग आराधना करने गए तो ये व्यक्ति वहाँ पर हर आराधना के दिन में वो व्यक्ति को उसके घर वाले मंदिर में के सामने लाकर बैठा दिया करते थे। तो पहली बात लिखा है 3 बजे प्रार्थना में मंदिर में जा रहे थे और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर में के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता था। इस मंदिर में करीब 10 फाटक थे और ये सुंदर फाटक, इसका नाम सुंदर इसलिए था कि सुंदर बनाया गया था, तो तांबे चांदी से और कुछ सोने से जड़ करके इसके चौकटों को, इसके किवाड़ों को बना करके और दूर से देखने में ये फाटक बहुत सुंदर लगता था और उसको सुंदर फाटक के नाम से पहचाना था। और बहुत ही इसका जो आकार था वो बहुत ही चौड़ा और बहुत ऊंचा था, 25 या 30 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा इसकी ऊंचाई थी इस दरवाजे की, सो बहुत ही चौड़ा था। तो इसीलिए इस फाटक को संबोधित करके कहा गया वो एक विशेष फाटक, क्योंकि और भी फाटक है परंतु ये व्यक्ति उस फाटक के सामने जो विशेष कहलाता है उस फाटक के सामने बैठा रहता है, इसीलिए इसको इस तरह से संबोधित किया गया है। मैंने कहा और भी अलग फाटक थे लेकिन ये व्यक्ति इस फाटक के सामने बैठाया जाता था। और तब आगे लिखा है सुंदर कहलाता था, बैठा दिया करते थे और वो मंदिर में प्रवेश करने वालों से भिक्षा मांगे। 3rd और 4th पद, जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर है तो वो भिक्षा मांगने लगा। ये व्यक्ति, थोड़ी देर के इस व्यक्ति पर विचार कीजिए, ये व्यक्ति जन्म से लंगड़ा है, असहाय है, असमर्थ है, किसी दूसरे पर निर्भर है और अब लोग उसको बैठा देते हैं, लोग जो वहां पर मंदिर में आते हैं उसको कुछ कुछ भिक्षा देते हैं, ये शाम को उसके घर वाले आते होंगे पुनः उठा के ले आते होंगे, उससे उसकी भी जीविका चलती है और शायद घर के लोगों की भी जीविका चलती होगी। और ये उसका प्रतिदिन का कार्य था मंदिर के सामने बैठना। आज भी आपने देखा है मंदिरों के सामने या बड़े बड़े चर्चेज हैं, उन चर्चेज के सामने बहुत सारे चर्चेज आप जाएंगे देखेंगे, चर्चेज के सामने आज भी लोग बैठे रहते हैं। तो ये थी, थोड़ी देर के लिए इस व्यक्ति पर विचार कीजिए, इसका स्थान क्या है, इसकी स्थिति क्या है। जब भी हम बाइबल में नए नियम में विशेष स्थिति से किसी व्यक्ति की दशा को देखते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन की में चंगाई की बात को करते हैं, तो हमें ये विचार करना है, सोचना है कि उस व्यक्ति के जीवन की स्थिति क्या है, उस व्यक्ति के जीवन का स्थान क्या है, उस जीवन के व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, इस चीज को देखना है। हमें उस व्यक्ति के मन के अनुसार देखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना है क्या ये जो आवश्यकता है उसकी यही आवश्यकता उसको जीवन में सब कुछ दे सकती है, या कोई और आवश्यकता है जिसको परमेश्वर दूसरी रीति से देखता है। और यही फर्क था इस व्यक्ति का सोचना, इस व्यक्ति का देखना, इस व्यक्ति का समझना कुछ और था, लेकिन अब पतरस और यूहन्ना का सोचना देखना समझना कुछ और था। उनकी स्थिति में, पतरस और यूहन्ना की स्थिति में, उनके सोच में इसकी आवश्यकता केवल पैसा नहीं थी, केवल ये नहीं था कि उसको कुछ पैसा दे दे। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, वो कह रहा है लिखा हुआ 4 पद में, तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एक टक देख कर कहा। क्या हुआ, जब ये उनसे भिक्षा मांग रहा है, अपेक्षा कर रहा है कि जैसे और लोग भी हैं ये भी मुझे देंगे, उनको इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम था, लेकिन अपेक्षा क्या थी कि कुछ उसको भीख मिल जाएगी, कुछ उसको पैसा मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आजकल कितने लोग परमेश्वर के लोगों के पास आते हैं, कितने लोग परमेश्वर के चर्च में जाते हैं, क्या अपेक्षा लेकर जाते हैं। आप प्रभु के साथ अगर हैं तो आप क्या अपेक्षा को लेकर प्रभु के साथ चल रहे हैं। आज इस कोरोना में सुबह से शाम तक आप चिंतित और परेशान रहते हैं, क्या अपेक्षा आपकी है। परमेश्वर और परमेश्वर के लोग आपको अलग दृष्टि से देखते हैं, और यह आवश्यक है। एक अच्छा विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी परिस्थितियों को अलग रीति से देखेगा, उसकी दृष्टि अलग होगी, उसका सोच अलग होगा, उसके विचार अलग होंगे, उसके कार्य करने के तरीके अलग होंगे। यह हमें इस आत्मिक जीवन में सीखना है। हम संसार के नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को नया बनाया है, परमेश्वर ने हमें आंखें नई दी हैं, परमेश्वर ने हमें सोच नई दी है, परमेश्वर ने हमें मस्तिष्क नया दिया है, और उसके साथ, और यही ठीक इनके साथ हो रहा है। तब पतरस उनके और यूहन्ना उनकी उसकी ओर देख रहे हैं, लिखा हुआ टकटकी लगा के, मतलब उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा है। क्या सच में आप लोगों के साथ आंखों में आंखें डालकर के बात कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं कर सकते। हमारे जीवन में हम अपने स्वार्थ के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी थोड़ी सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हम उस बात को नहीं देखना चाहते जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। ये बिल्कुल अनजान था इन सारी बातों से, उसके लोग अनजान थे, लोग केवल उसको देखते थे। आगे चल के हम देखेंगे तब क्या हुआ आगे चल करके। तब उसने कहा, वो कुछ पाने की आशा से उनकी ओर से ध्यान से देखने लगा। वही रिस्पॉन्स उसका है, वो भी आंखों से आंखें मिलाकर उनकी देख रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है। ओ, ये मेरी ओर देख रहे हैं, आंखें मिलाकर देख रहे हैं, ओ ये मुझे कुछ दे देंगे। शायद दूसरा 5 रुपए देता है तो शायद ये 10 रुपए दे देंगे, दूसरा 100 रुपए देता है तो ये शायद 1000 रुपए दे देंगे। आज कितने ऐसे हैं, इवन मसीह लोग जो हमने विश्वास कर लिया है, इसी प्रकार का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को समझिए, इनकी अपेक्षा क्या थी, ये क्या अपेक्षा रख रहे हैं, ये व्यक्ति क्या अपेक्षा रख रहा है। तब उसके बाद क्या होता है, तब उसके बाद कहता है, तब पत्रस 6 पद में, तब पत्रस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है। भैया, आज बहुत सारे लोगों को आंख बंद करके कलीसियाओं में सेवकों को कहता, सहायता करना बुरा नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन लोगों को लोभ में डाल करके आगे बढ़ाना वो पाप है, भयंकरता है। लोग परमेश्वर पर ज्यादा निर्भर रहे हैं, मेरे और आप पर निर्भर ना रहे। हमें अपने प्रेम को दिखाना है, हमें उनकी चिंता करना है, लेकिन अगर लोग केवल मुझ पर निर्भर करने लगे या किसी लीडर पर निर्भर करने लगे तो वो गलत है, क्योंकि कल वो लीडर भी मनुष्य है, उससे वो भी गिर सकता है। हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी है। आज मैं अपने यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था कि इन दिनों में मुझे एक परमेश्वर बोझ दे रहा है, और मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, और वो आर्टिकल आप तक पहुँचाऊँगा 2-4 दिन में। परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है, और बहुत सारे विचार मेरे अंदर आ रहे हैं जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों के रिस्पॉन्स को सुन रहा हूँ, लोगों की आशाओं को देख रहा हूँ, लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रहा हूँ। खासतौर से विश्वासियों के लिए जो नौकरी भी कर रहे हैं, जिनके पास सब कुछ अच्छी तरह से, फिर उनके प्रतिक्रिया क्या है, फिर भी उनकी अपेक्षा क्या है, उनकी आशा क्या है। मेरे प्रिय गंभीर बात है। और तब वो कहता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है। संसारिकता बौद्धिकता के पीछे ना भागिए। और कितने आज प्रचारक जो संपन्नता का प्रचार करते हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह के पास आओ तुम्हें धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, अरे कार मांगो तो हवाई जहाज मिल जाएगा। छूट है, गलत है, मिथ्या है। परमेश्वर ये नहीं देना चाहता। जरूर है, पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो। परमेश्वर हम नहीं चाहता कि हम नंगे रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भूखे रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बिना छत के हम सोएं। परमेश्वर उसका उपाय करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा उसके लिए कि तुम मेरे दृष्टि में उन गौरैया से बढ़कर तुम्हारी कीमत है, जो ना तो गाती है ना होती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है, उनको वस्त्र पहनाता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, इन दिनों में मैं आपके विश्वास को इनकरेज करना चाहता हूँ। आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, उस पर निर्भर होइए। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। सोना चांदी से बढ़ करके परमेश्वर आपको और देना चाहता है। देखिए उसको क्या क्या मिला है, अभी हम आगे चल के देखते हैं। तब पतरस ने कहा मेरे पास चांदी सोना नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। क्या है, क्या था उनके पास? उनके पास यीशु नासरी था। वो कहता है यहां पर, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हमारे पास यीशु मसीह नासरी है। कौन यीशु मसीह नासरी? हम शुरू से इस बात को देखते चले आ रहे हैं। वो यीशु कौन है जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, तुम जिसको तुमने मार डाला, उसी को परमेश्वर ने जीवित किया, मुर्दों में जलाया। हम उसके गवाह हैं, हमने उसको देखा है, हमने उसको सुना है। हमारे पास सबसे बड़ा धन यीशु मसीह है, नासरी, जो नासरत का निवासी है, इसलिए उसको नासरी कहा गया। वो यीशु मसीह है जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी देखभाल करता है, जिसमें होकर हमें सब कुछ वो देने की तैयार रहता है। सो हमारी प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह होनी चाहिए इन दिनों में। जीवन में यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पाया है, हम कई बार चिंता करके इतना परेशान हो जाते हैं। चिंता दो तरह की होती है, ऐसी भी चिंता ये नहीं, अरे मुझे चिंता नहीं, मैं घर में बैठा रहूंगा। एक बार दो जन बाप बेटे रात में सो रहे थे, सच्ची घटना है ये, वो बेशुद्ध होकर सो रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। रात में चोर आ गए, बेटा बाप से कह रहा कुछ खटखट की आवाज आ रही है, बाप बेटे से कह रहा कुछ खटखट की आवाज आ रही है, वो गुस्से जा रहा है, वो और चिंता नहीं थी उनको, सोने की चिंता थी। और जब सुबह उठे तो देखा कि सर सारी चोरी हो गई। ये इस तरह की चिंता, ये वो गलत है। लेकिन जिस चिंता में हम परमेश्वर को प्राथमिकता का स्थान ना दें, जिस चिंता में जो परमेश्वर का कार्य है उसको हम ना करें, जिस चिंता में परमेश्वर जो चाहता है उसको ना सुने, फिर जिस चिंता में परमेश्वर के आगे का पालन ना करें, वो गलत है। कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमें शम और वश परेश में इस बात को जानना है कि यीशु मसीह नासरी हमारे साथ है। वो उनके साथ था, वो उनका अधिकार था। अब वो क्या कहता है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। फिर उसने, किसने? पतरस ने उसका दायना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई। किसका विश्वास था? ये पतरस का विश्वास था। पतरस ने उसका हाथ पकड़ा, पतरस ने उसको खड़ा करा, पतरस ने उसको चंगाई दी। कई बार ये हीलर जो होते हैं, तुम विश्वास करो, जरूर विश्वास करना है, तो जो है अरे चंगा नहीं पा रहे तुम्हारे, लेकिन आपका विश्वास क्या है? क्योंकि आपके अंदर खुद से यीशु मसीह नासरी नहीं है, आपकी स्थिति दूसरी है। हमने परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ के सामने रखा है। यहाँ पर पतरस ने अपना हाथ दिया है, पतरस ने अपना हाथ बढ़ाया है, पतरस ने उसकी सहायता की है, की सहायता की है, और तब वो खड़ा होने पाया है। मेरे प्रियो, हम विश्वासी को एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीखना है, हमें एक दूसरे का हाथ थामना सीखना है, एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके को उठाना सीखना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को। तब आगे चल करके यीशु नासरी वो उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। उसने चलते उछलते परमेश्वर के, अब क्या हुआ, वो तुरंत उसमें बल आया। अब जब बल आया तो क्या देख रहे हैं उसके बारे में, उसके जीवन का परिवर्तन। पतरस के पास क्या है? पतरस के पास यीशु नासरी है, पतरस के पास यीशु का विश्वास है, पतरस के पास यीशु का अधिकार है। आप और मेरे पास क्या है? क्या वो विश्वास है जो इनके पास था? क्या वो यीशु नासरी 24 घंटे आपके पास है, आपके साथ है? क्या आपके पास वो अधिकार है? इस बात को देखना समझना है। तब आगे चलकर हम आगे बढ़ते हैं, नवे पद में, नवे दसवें पद में क्या कर गया? तीन चीजें हैं। जैसी उसको चंगाई मिली, वो उछलते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर के मंदिर में पहुंच गया, बल प्राप्त हुआ, उठ खड़ा हुआ। स्थिति में उसकी स्थिति बदल गई, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, उसकी स्थिति बदल गई। और ये इफिसी की पत्री में हम देखते हैं, इफिसी में पौलुस साफ कहता है, उसके दूसरे अध्याय जो हम पढ़े, उसने हमें उठाया, उसने हमें जिलाया, उसने हमें उठाया, उसने हमें स्वर्ग स्थान में बैठाया। भजन संहिता 1 में, क्या ही धन्य हो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्टा करने वाले के मंडली में नहीं बैठता। ये पाप की स्थिति है, चलता है, खड़ा करता है, बैठ जाता है। परमेश्वर उस बैठी हुई स्थिति से मुझे और आपको उठाता है। बार बार इसको हम सुसमाचार में देखते हैं। मेरे प्रियो, एक दिन मैं और आप भी उस पुरानी स्थिति में, पाप की स्थिति में, दलदल में, कीचड़ में पड़े हुए थे। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के उस हाथ के लिए जिसने उसे थामा। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किसी न किसी सेवक को खड़ा कर दिया, जो वो हाथ बन गया, जिन्होंने मेरे और आपके हाथ को थाम लिया और प्रभु यीशु मसीह में होकर के, उस सामर्थ्य में होकर के मेरी और आपकी सहायता करी कि हम वहाँ से खड़े हो जाएं। और खड़े होकर के उन्होंने मुझे और आपको चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, हमेशा वो आपके साथ रहे, आपको उठाया। मेरे प्रियो, प्रिंसिपल बाइबल का एक ही है। यहाँ पर इसको पतरस और यूहन्ना की आवश्यकता थी, आज भी लोगों को सेवकों की आवश्यकता है, प्रभु के लोगों की आवश्यकता है, उन जनों की आवश्यकता है जिनके माध्यम के द्वारा आप सुसमाचार को सुने, उन जिन आवश्यकता है जिसके माध्यम के द्वारा आप यीशु मसीह को जाने, जिनके माध्यम द्वारा लोग आपके लिए प्रार्थना करें और आप उस पाप की दशा से निकल करके प्रभु के राज में खड़े हो सकें। मेरे प्रियो, ये है। तब आगे चल के कहता है, सब लोग अब क्या कर रहा है, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। ना केवल उसने बल पाया, ना केवल उसने उठ खड़ा हुआ, लेकिन स्तुति का जीवन आ गया, परमेश्वर की आराधना का जीवन आ गया। किनके साथ? उन्हीं के साथ, परमेश्वर के भवन में गया है। वो जान लिया कि यीशु नासरी इनका परमेश्वर, यीशु नासरी अब वो उनका परमेश्वर बन गया। वो पतरस और यूहन्ना की नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो यीशु नासरी है। और मेरे प्रियो, ये सच है कि हम अपने अगुओं की आदर करते हैं, लेकिन हम उनकी आराधना नहीं करते, हम उनके पीछे ऐसे नहीं चलते। और कितने जगह आज ऐसे है, लोग अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा लाके प्रस्तुत कर देते हैं। सावधान रहिए, हम सेवक हैं, हमें हाथ पकड़ के दूसरे को उठाने का बनना है, लेकिन महिमा यीशु को मिलनी है, बड़ाई उसको मिलनी है, हमें उसके पास जाना है। और यहां पर वो कहता है, अब परमेश्वर के लोगों के साथ ना केवल ये, लेकिन क्या हो रहा है, दसवें पद में, उसे पहचान लिया कि वही जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा भीख मांगा करता था और जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे देखकर आश्चर्य करके विस्मित होने लगे। उसे पहचान लिया उन लोगों के बीच में, उन्होंने देख लिया, ये अच्छा, ये लंगड़ा, अरे ये तो भीख मांगता था, लेकिन आज इसके जीवन में क्या हो गया। मेरे प्रियो, आपके गाँव के लोग, आपके शहर के लोग, आपके ऑफिस के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आज जब आपके जीवन में परिवर्तन होता है पहचान लेते हैं, आपके कार्यों से, आपके जीवन से, आपके निर्णय से। आप गलत कामों में समझौता नहीं करेंगे, आप बहानेबाजी नहीं करेंगे, गलत है तो गलत है। मेरे प्रिय, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन के लिए। आज मैं सुबह जब विचार कर रहा था तो मैं विचार कर रहा था कलीसियाओं में कितना स्पष्टता के साथ ही सिखाया जाता है कि आप सरकार के नियमों का पालन करें, चोरी ना करें, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट जरूर लें, कटिया ना लगाएं, गलत मत करें, बार बार कहा जाता है। क्यों? ताकि वो चीजें गांव में, हमारे पड़ोसी में और हमारे लोगों के बीच में साक्षी बनी रहे। अगर वही काम वो कर रहे हैं जो दुनिया के लोग हैं और वही काम हम कर रहे हैं तो हम में उनमें क्या फर्क है, हमारी क्या साक्षी है। ये गवाही का जीवन, लोग उसको देख रहे हैं। क्या मेरा और आपका जीवन गवाही का जीवन है? जिस गाँव में आप हैं, जिस घर में आप हैं, पड़ोसी आपको क्या देखते हैं? गंगा गाए तो गंगा दास, जमुना गाए तो जमुना दास। कलीसिया में आए तो बिल्कुल सादे बनकर आए, बड़े अच्छे लेवल के आए, लेकिन जब गांव में जाएं, शादी ब्याह में जाएं, जो चीजें दबा के रखी हैं, फिर उनका सेवन कर लें, फिर उनको करें, अरे क्या करें, मजबूर है, करना है, नहीं तो घर से निकाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास को लेकर के खड़े हुए, घर से लोगों ने उनको निकाला, बेकुश बेसहारा थे, लेकिन प्रभु ने उनको ना छोड़ा ना त्यागा, परमेश्वर ने उनको स्थित किया। वो परमेश्वर जो उनका परमेश्वर, वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। मैं भी अपने दिनों को याद करता हूँ जब मैं घर से निकला था, कैसे निकला था, किस स्थिति में निकला था। छोटा सा टीन का बक्सा था जो आज 12 बक्के पड़ा होगा, मुझे मालूम है कैसा। और मुझे वो भी दिन याद है जब बहुत समय आया जो मैं समझौता कर सकता था, पर परमेश्वर ने सहायता की। मेरे प्रियो, हर एक को इस स्थिति में से होकर जाना पड़ता है। आप दृढ़ होइए, बलवंत होइए, इस बात का ध्यान रखिए, परमेश्वर आपके साथ करेगा। क्यों? कौन उसके जीवन में काम कर रहा है? यीशु नासरी काम कर रहा है। पतरस ने क्या दिया उन्हें? यीशु नासरी को दिया है। क्या सच में मैं और आप लोगों को यीशु नासरी को दे पा रहे हैं? तब उसके बाद आगे जल्दी से हम चलेंगे, 11 पद से लेकर के 26 पद तक अब यहां पर दूसरा प्रचार देखते हैं जो मंदिर में है, जो पतरस और यूहन्ना के द्वारा है। पहला प्रचार या पहला भाषण परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा 14 पद से हमने देखा था। अब ये दूसरा पतरस का उपदेश है, दूसरा उपदेश है। 12 अध्याय तक हम पतरस को देखते हैं, 13 अध्याय के बाद हम पौलुस को देखेंगे और ठीक वही क्रियाएं पौलुस के जीवन में देखेंगे जो पतरस के जीवन में देख रहे हैं। जिस प्रकार से पतरस के जीवन में घटनाएं घटनी है, ठीक वही घटनाएं वही चीजें पौलुस के जीवन में भी घटेंगी। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात और आगे बढ़ने से पहले, क्यों परमेश्वर ने ये होने दिया कि ये व्यक्ति इनके द्वारा यीशु नासरी के नाम से चंगाई को प्राप्त करे? तीन मुख्य कारण। पहली बात, ताकि लोगों के मध्य में इनकी सेवा स्वीकृत हो सके, इनकी सेवा को ये लोग एक्सेप्ट कर सके। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था? यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में, फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, क्या कह रहा है? हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। ये लोग इस बात को मानते थे, जानते थे कि बिना परमेश्वर के सामर्थ के वो चिन्ह प्रकट नहीं किए जा सकते। और ये पतरस और यूहन्ना, इनकी सेवा आगे बढ़नी है और परमेश्वर ने यह अलाउ किया, ये होने दिया कि मंदिर के जाम में जाते समय ये इस कार्य करें, इस चिन्ह को प्रदर्शित करें, जिस चिन्ह को प्रदर्शित करने द्वारा लोग जान सके परमेश्वर इनके साथ है, बिना परमेश्वर के इनको कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह, और भी स्थल है लेकिन समय होने के कम होने नाते मैं जान नहीं आप ध्यान दिए और भी। दूसरी बात, ताकि लोग इस बात को पहचान सकें कि इनके पास परमेश्वर ने सामर्थ और अधिकार को दिया है। कितने समय से ये लंगड़ा व्यक्ति उस दरवाजे पर बैठा हुआ था, कितने लोग आया जाया करते थे, कितने उसमें यहूदी शास्त्री, फरीसी की शिक्षक, व्यवस्थापक, बहुत कुछ पढ़े लिखे मजबूत लोग आया जाया करते थे, लेकिन कोई ये नहीं कर सका। दूसरी बात, ताकि उसके द्वारा ये प्रदर्शित हो सके कि परमेश्वर की सामर्थ इनके पास और अधिकार उन्हें प्रदान है, परमेश्वर ने उनको अपना सामर्थ दिया है और अपना अधिकार दिया है। इसलिए उन्होंने कहा था यीशु नासरी के नाम से। मैंने आरंभ में बता दिया था कि उन यहूदियों के लिए यीशु नासरी आया नहीं था, लेकिन इनके लिए यीशु नासरी आ चुका था। और कहने वो यीशु नासरी आ चुका है, हम उस पर विश्वास करते हैं, हमने उसको जाना है, हमने उसको माना है और इसलिए हम उसको देख रहे हैं। परमेश्वर सहायता करे। तब आगे चल के हम देखते हैं तीसरी बात, ताकि परमेश्वर की दया इनके द्वारा उस व्यक्ति पर प्रकट की जा सके। ध्यान दीजिएगा, ताकि परमेश्वर की दया उस व्यक्ति पर जो लंगड़ा है, उस व्यक्ति पर प्रकट की जा सके। प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार में केवल व्यवस्था को मात्र पूरा करने का कारण नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दया को प्रदर्शित करने का था। और उसी दया को प्रदर्शित करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान किया था। मेरे प्रियो, हर मनुष्य दया का पात्र है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, परंतु परमेश्वर चाहता है हर एक को मन फिराव का अवसर मिले और पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास लौट आए। सो परमेश्वर की दया को लोग जान सकें कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, जिसका ये सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जिस यीशु का प्रचार कर रहे हैं, वो यीशु दया का परमेश्वर है। वो मनुष्य को दया देने के लिए आया है, मनुष्य को उस दया में होकर जीवन देने के लिए आया है, मनुष्य को उस जीवन से, वो जीवन जो बंधुआई का या कंगाली का या बर्बादी का, उससे निकालने के लिए आया है, लोग के द्वारा परमेश्वर की दया को समझ सके, पहचान सके। और भी कारण उसने हैं, लेकिन तीन मुख्य कारण को मैंने आपके सामने रखा है और इसके द्वारा परमेश्वर ने उनकी सेवा को स्थापित किया है। अब उसी अधिकार में होकर के ये सुप्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक व्यक्ति चंगा हो चुका है, लोगों ने देखा है, लोग उत्सुक हो चुके हैं, लोग अब कुछ और सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अब तब करके बड़े याब के साथ परमेश्वर का वो प्रचार कर रहे हैं। और क्या प्रचार कर रहे हैं? बहुत कुछ पुराने नियम से कई बार उन लोग कोट करते हैं, बार बार पुराने नियम को, अब्राहम को, इजाक को, दूसरे लोगों को लेके आते हैं, याकूब को, कि उनका परमेश्वर कौन परमेश्वर है। 11 पद में इब्राहिम, याजुक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वज के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमित किया है, इस सब कुछ के द्वारा यीशु को ऊंचा उठाया है। वो परमेश्वर जो इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इजाक का परमेश्वर, उसी परमेश्वर पिता की योजना में होकर यीशु यहाँ पर आया है, यीशु भेजा गया है, और उसको परमेश्वर ने महिमा दी है, उसको ऊंचे पर उठाया है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग यीशु को ऊंचा उठा रहे हैं, हमारी सेवा में, हमारी चंगाई की मिनिस्ट्री में, हमारी किसी और चीज में, हमारे किसी कार्य में, केवल प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलनी, प्रतिशील रहना है कि उसका स्थान किसी प्रकार से खोने ना पाए। मेरे प्रियो, हम सावधान हैं। तब उसके बाद आगे चल करके कहता है, तुमने उसको पढ़वा दिया। ये यीशु कौन यीशु है? अभी देखिए, पहले दिन बार बार हम एक ही चीज को प्रेरित काम में देखेंगे। जितनी बार ये लोग प्रचार करते हैं, वो यीशु मसीह को सामने लाते हैं, और यीशु मसीह को सामने लाते हुए यीशु मसीह कौन है हमें जानना है। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो अच्छा ये है कि परमेश्वर के गुणों को आप पहले जाने। क्या परमेश्वर में ये गुण है? क्या परमेश्वर में ये चीजें हैं? परमेश्वर में कैसे गुण होते हैं? अब यहां पर है, वो लिखा उसके बारे में, तुमने उस पवित्र और धर्मी को, यीशु पवित्र है, यीशु धर्मी है, यीशु परमेश्वर का सेवक है, यीशु परमेश्वर का पवित्र है, यीशु परमेश्वर का धर्मी है। आगे चल के कह रहा, तुमने उसको अस्वीकार करा, पर 15 पद में, परंतु जीवन के कर्ता को मार डाला। तुमने, यीशु जीवन का कर्ता है, जीवन को देने वाला उसका अधिकार है, वो जीवन दाता है, जीवन को देने वाला है, जीवन का निर्माण करने वाला है। आदि में उसने, उत्पत्ति में हम जा पाते हैं, मनुष्य की सृष्टि के समय में, मनुष्य की रचना के समय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां पर उपस्थित थे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह ने उस सृष्टि की है, मुझे और आपको, मानव को, प्रभु परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर ने बनाया है। वो सृष्टि करता है, सृष्टि का देने बनाने वाला है, वो ऐसा है। तो कहता है, वो परमेश्वर ऐसा है, यीशु मसीह, यीशु नासरी, जिसके नाम से चंगाई पाई है, जिसके नाम से चलने फिरने लगा है, जिसके नाम से आश्चर्यकर्म हुआ, ये कौन वो है? वो यीशु परमेश्वर का सेवक है, वो यीशु परमेश्वर का पवित्र है, वो यीशु परमेश्वर का धर्मी है, वो यीशु परमेश्वर का जीवन का कर्ता है। आगे चल करके वो कहता है, जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, उसके हम गवाह हैं। तुमने तो उसको मार डाला, पर परमेश्वर ने उसको जिलाया, हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। उसी नाम से, किस नाम से? वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो यीशु नासरी नाम है, जिस नाम के आगे दुष्ट आत्माएं कांपती थरथराती हैं, जिस नाम से प्रार्थना की सुनी जाती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, उस नाम से, जिस नाम के आगे एक दिन हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके लिए लिखा है कि इस पृथ्वी के ऊपर स्वर के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल यीशु का नाम, एक नाम, मेरे प्रियो, और कोई नहीं। 10 के साथ हम एक को लेकर नहीं चल सकते। यीशु अलग है, उसका जीवन अलग है, उसकी सार्वभौमिकता अलग है, उसकी पवित्रता अलग है, उसकी प्रभुसत्ता अलग है। हम कई बार गांव देहातों में सुनते हैं, ठीक है, हम उसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह अलग परमेश्वर है। अपने गुणों में वो विशिष्ट है, अपने कार्य में विशिष्ट है, अपने अधिकार में वो विशिष्ट है, वो हर एक बात में अलग है। वो यीशु, आपने किस यीशु को जाना है? मेरे प्रियो, कह रहा है, उस काम प्रचार करते हैं जो यीशु के नाम पर है, कि वो यीशु नासरी कौन है। और बार बार उनके उपदेश में, उनके प्रचार में यीशु मुख्य केंद्र है। हमारे प्रचार का केंद्र प्रभु यीशु मसीह होना है। उसका क्रूस का बलिदान, उसका मेरे और आपके लिए क्रूस पर लहू बहाया जाना, उसका पुनरुत्थान और पुनः उसका आगमन जो आशा है, ये हमारे कोई भी सुसमाचार है, कोई भी प्रचार है, उसमें ये मुख्य है, हमारा बिंदु होना अनिवार्य है। और हम इस बात को देखते हैं, और ये प्रेरित के पूरे प्रेरित काम की पुस्तक में जहाँ भी वो प्रचार करते हैं इस चीज़ को करते हैं। और ये तो वो कहता आगे चल करके, उसी यीशु के नाम से, 15 पद में, यीशु के नाम में, अर्थात उस पर विश्वास के द्वारा जो यीशु के नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम जानते और देखते भी हो, बल मिला उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसे सबके सामने पूर्ण चंगाई मिली है। उस विश्वास के द्वारा उस विश्वास ने जो उसके द्वारा है, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर विश्वास देने वाला है। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है रोमी 10:17 में, और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं बार बार बात को बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ कि हम कानों से उसके वचन को सुनते हैं, मस्तिष्क से उसके वचन को समझते हैं, हृदय से उसके वचन को हृदय में ग्रहण करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं और जीवन में प्रदर्शित करते हैं, जैसे इस लंगड़े के जीवन में प्रदर्शित हो रहा है। तो ये प्रचार कर रहे हैं, ना केवल प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के बाद अब एक बुलाहट है, एक चुनौती है, एक निमंत्रण है। जितने लोग उस मंदिर में इकट्ठा हैं, वो सुसमाचार को सुन रहे हैं, यीशु को सुन रहे हैं। यीशु आ चुका है, यीशु ने जीवन दिया है। तुमने उसको पहचाना नहीं, तुमने उसको स्वीकार नहीं करा, तुमने उसका तिरस्कार करा, तुमने उसको मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने अपनी कथन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार उसको जिलाया है। और तब 17 पद से लेकर आगे चल करके हम बहुत सारे पुराने नियम के कोटेशन को पाते हैं, उदाहरण को पाते हैं जो कहते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात जो अंतिम में मैं आपके सामने दो बातें लाना चाहूंगा, पहली बात उस निमंत्रण में 18 पद, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब नबियों के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उसने इसी तरह से पूर्ण किया। इसलिए क्या करो? इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण संदेश है। पत्रस क्या कहना चाह रहा है? तुम्हें अपने पाप को पहचानना है। तुम्हारी ये झूठी धार्मिकता तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले आएगी, परमेश्वर के राज में नहीं ले आएगी। तुम्हारी रीति विधियां का पालन करना परमेश्वर के राज में नहीं पहुंचाएगा। लेकिन सच्चाई के साथ तुम्हें अपने पापों को देखना है, अपने पापों को पहचानना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है और कहना है, प्रभु जी आप मेरे पापों से मुझे क्षमा करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हो सकता है कि आप विश्वास से आपने सच्चा पश्चाताप किया है और सच्चा पश्चाताप करने के बाद भी आपके जीवन में पाप वास करता है, झूठ है, छल है, धोखा है, घमंड है, ईर्ष्या है, ढा है, क्रोध है, किसी प्रकार का लालच है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर का वचन चुनौती देना चाहता है। अविश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, अरे प्रभु ये करेगा ये नहीं करेगा, अविश्वास कारण निराशा है आती है हमारे अंदर। लेकिन उस निराशा में हमारे अंदर हमारे विश्वास को नहीं कम होना है। कैसी स्थिति आप जानते हैं? यदि आपने यीशु को पा लिया, शायद किसी विरोध के कारण, समस्या का कारण, कई बार समस्या हमारे भीतर से आती हैं, कई समस्या बाहर से आती हैं, कई बार समस्या हमारे मित्र, हमारे अजीज, हमारे मित्र परिवार के लोग, हमारे संबंधी लोग हमारे जीवन के लिए खड़ी कर देते हैं, कई कारण होते हैं। लेकिन उनके कारण क्या मेरा जीवन या आपका जीवन किसी प्रकार के पाप पे तो धकेला नहीं जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप करो, लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु की उपस्थिति में तुम सुख और चैन के दिन आए। आप प्रभु की उपस्थिति में कैसे दिन व्यतीत कर रहे हैं? ये चुनौती है, ये चेतावनी है, ये निमंत्रण है, ये प्रोत्साहन है। आप इसको चुनौती के रूप में ले सकते हैं, आप इसको चेतावनी के रूप में ले सकते हैं, आप इसको निमंत्रण के रूप में ले सकते हैं, आप इसको प्रोत्साहन के रूप में ले सकते हैं। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें कि हम बार बार, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु जानता है मेरे मन को, मैंने अपने आप को परमेश्वर सामने दीन किया। हमेशा जब भी वचन पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ, पहले मैं अपने आप को प्रभु के सामने रखता हूँ, क्योंकि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ और वचन की सेवा करूँ गंभीर स्थान है। मुझे और भी परमेश्वर के वचन के प्रचारक होने के नाते, शिक्षक होने के परमेश्वर का सामने हिसाब देना पड़ेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, आप जो पास्टर, प्रचारक, सेवक अगर इस वचन को सुन रहे हैं, तो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सावधान हो जाइए, अपने जीवन को हल्का सा मत लीजिए, मुँह देख कर न्याय मत कीजिए, सच्चाई का जीवन व्यतीत करिए, आप परमेश्वर के सामने लौट आइए। तब आगे चल करके बहुत सारी बातों कहता है, वो परमेश्वर का नबी बताता है, परमेश्वर का सेवक बताता है। एक नबी जिसके लिए मूसा ने बहुत समय पहले कहा था, हम व्यवस्था विवरण में 18 अध्याय में पाते हैं, उसी में कहा था कि मैं एक और नबी को खड़ा करूँगा। मूसा नबी था, लेकिन मूसा से एक और सिद्ध नबी, वो यीशु की ओर संकेत था। नीचे पद दिए गए हैं, घर में आप बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन अंतिम बात जो 26 पद में है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने सेवक को जिलाकर उसे पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से प्रत्येक को आशीष दे, अर्थात बुराइयों से फेरे। आशीष, सच्ची आशीष क्या है? धन, दौलत, मकान, रोटी, कपड़ा, बड़ी नौकरी, बड़ा परिवार, बड़ी गाड़ियाँ, क्या ये आशीष है? ये आशीष तो संसार के लोगों के पास भी है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हमसे कई गुना है, लेकिन सच्ची आशीष क्या ये है? नहीं, ये तो हमारी आशाएं हैं और आशाओं को परमेश्वर पूरा करता है। चाहना बहुत हो सकती है, परमेश्वर हमारी आशाओं पूरा करता है, लेकिन जब चाहनाओं में जीवन व्यतीत करने लगते हैं और चाहनाओं में अभिलाषा में जीवन व्यतीत करने लगते हैं और तब ख्वाब देखने लगते हैं और तब हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए प्रभु ने सिखाया कि तुम प्रार्थना करो, प्रति प्रभु पिता आज की रोटी तू मुझे दे। सच है, हम उसे मांगते हैं और मैं देता है, लेकिन सबसे बड़ी आशीष क्या? पापों की क्षमा है। सबसे बड़ी आशीष क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है। सबसे बड़ी आशीष क्या है? परमेश्वर की शांति है। सबसे बड़ी आशीष क्या है? इस मृत्यु के बाद भी जीवन है। अगर आज मर जाना पड़े तो मैं प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, यह आशीष है। इस सब आशीष क्या है? अनंत जीवन। यदि मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो कभी अंत ना होगा। मेरे प्रियो, ये आशीष कितना सुंदर पद है। उसने इसलिए भेजा है ताकि तुम में से प्रत्येक को वो आशीष प्रदान करे। वो क्रूस पर बलिदान किया गया, वो मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, पीड़ा सही, दुख सा, निंदा सही, अपमान सा, ताकि मुझे और आपको स्वर्गीय आशीष प्रदान कर सके। इफिसियों का पहला अध्याय उसका तीसरा पद, उसने मुझे और आपको स्वर्गीय आशीष से आशीषित किया है। सबसे बड़ी आशीष ये है। मेरे प्रियो, बाइबल में चंगाई आशीष हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी आशीष वो नहीं है। कितने लोग हैं जो बीमारी की दशा में रहे और बीमारी की दशा में उनकी मृत्यु हो गई। कितने इतिहास में ऐसे लोग रहे जो बीमारी की दशा में अंतिम बीमारी दशा में रहे। लखनऊ में मैं एक परिवार को जानता हूँ, एक भाई है जो करीब 25 साल से ज्यादा आज बीमारी में, उन्होंने सेवा करी लेकिन आज ऐसी स्थिति में है वो। मेरे प्रियो, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने यीशु मसीह को पाया है। उनके द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया है, बहुत सारे लोग उनके यीशु के पास आए हैं। जब उस स्वर्ग में जाएंगे बहुत सारे लोगों वहां देखने पाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं? क्या शारीरिक चंगाई सबसे बड़ी आशीष है? फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, क्या भौतिकवादिता सारी आशीष है? क्या अगर मेरे पास एक गाड़ी नहीं है तो मेरे पास आशीष नहीं है? गलत है, गलत है। आशीष जीवन की संतुष्टि सबसे बड़ी आशीष है। जीवन की संतुष्टि सबसे बड़ी आशीष है और संतुष्टि का देने वाला परमेश्वर है। किसी ने कहा है संतुष्टि आनंद की जननी है, सेटिस्फेक्शन इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये कहा है। क्या आपके पास सचमुच में वो आनंद है? क्या आपके साथ आपके पास वो सच्ची संतुष्टि है? आप अपनी परिस्थितियों को देखकर व्याकुल तो नहीं है, परेशान तो नहीं है? मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। दुख में, बीमारी में, कोरोना में, किसी भी चीज में, घटना में, दुर्घटना में, कितने लोगों को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं जो बेचारे रात ही रात दुर्घटना से संसार में चले गए। मैं जब इन पर विचार करता हूँ मैं सोचता हूँ कितने ऐसे लोग होंगे जो सचमुच में दूसरे देशों में, दूसरे प्रांतों में रहते हुए, चाहे महाराष्ट्र में चाहे कहीं में, उन्होंने शायद यीशु के सुसमाचार को सुना होगा, यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा, यीशु मसीह को जानते होंगे, लेकिन आज उनके सामने स्थिति आ गई। मेरे प्रियो, इस संसार में तो उन्होंने आँख बंद करी होगी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी आशीष होगी अगर उन्होंने सच्चा विश्वास किया है कि वो प्रभु के साथ है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आशीष देने आया, वो आशीष जीवन की आशीष है, वो आशीष पापों की क्षमा की आशीष है, वो आशीष एक धन्य आशा की आशीष है। प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ राज करेंगे, वो हमें अपने साथ रखेगा, ये आशा की। मेरे प्रियो, कितने लोग आज परेशान हैं, घर है उनके पास, नौकरी उनके पास है, पैसा उनके पास है, लेकिन फिर भी ऐसे जीते हैं जैसे उनके ऊपर कंगाली छाई हुई है, क्योंकि उन्होंने वो आशीष नहीं पाई जो यीशु मसीह देना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या आपको प्रभु यीशु मसीह ने वो आशीष दी है? क्या आपके पापों की क्षमा में हुई है? क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? क्या आपके जीवन में वो विश्वास है जो यीशु मसीह का विश्वास है? क्या आपके पास यीशु नासरी है जिसको आप लेके साथ चल सकते हैं और जिस यीशु नासरी के नाम में आप प्रभु की सामर्थ को प्रदर्शित करते हैं, प्रभु की गवाही देते हैं, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं कि यीशु नासरी आपके साथ है, उसने आपको बचाया है, उसने आपको जीवन दिया है? क्या ये आशीष आपके साथ और मेरे साथ है? यदि है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। अगर नहीं है तो परमेश्वर से मांगे, प्रभु से कहे मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपनी दृष्टि संसार और संसार की वस्तुओं पर लगाया है, मुझे क्षमा करें, मैं आप पर लगाना चाहता हूँ, मैं आप पर लगाना चाहती हूँ, मैंने आशीष को कुछ और समझा, भौतिकवादिता को आशीष समझा, प्रभु मुझे क्षमा करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उस स्वर्ग राज की खोज में लगे जिसको परमेश्वर ने मेरे और आपके दिया है। तो यहाँ पर हम तीसरे अध्याय में देखते हैं किस प्रकार से आरंभ होता है, किस प्रकार समाप्त होता है। कहता है कि प्रत्येक को आशीष दे, अर्थात बुराइयों से फिर दे। पाप से फिरना, पाप के जीवन से फिरना, बुराई से फिरना सच्ची सबसे बड़ी आशीष है। पवित्र जीवन व्यतीत करना, झूठ और छल और धोखे और चालबाजी, लालच और स्वार्थ, इनको लेकर जीवन में ना चलिए, फेंक दीजिए, पॉकेट में मत रखिए, फेंक दीजिए, पश्चाताप करिए, क्षमा मांग लीजिए प्रभु से। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त करिए। प्रभु का वचन कहता है कि बहुत सारे हैं जो मेरे नाम से प्रचार करेंगे, मेरे नाम से शिक्षा देंगे, मेरे नाम से चंगाई करेंगे, मेरे साथ बात कहेंगे, प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। काश मैं और आप उसमें से ना होने। सावधान हो, सचेत हो, जागृत हो जाओ, सावधान हो। परमेश्वर इस वचन को अपने महिमा का कारण ठहरे और मुझे और आपका आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।